भगवान श्री गोवर्धन को धारण किए और हमारे आचार्यों ने अनेक टीकाएं इस पर लिखी हैं। उनका उद्गार हम इन 8 कारणों में देख रहे हैं, जिनमें से हम तीसरे कारण पर हैं कि भगवान ने गोवर्धन पूजा का उद्घाटन करने हेतु गोवर्धन लीला ये करी। भगवान की नजरों में पूजनीय कौन है? यहां पर स्पर्धा इंद्र, देवराज इंद्र और गोवर्धन में शुरुआत हुई। देवराज इंद्र और भगवान श्री कृष्ण में स्पर्धा, परंतु भगवान श्री कृष्ण पर तो संवर्तक बादलों की एक बूंद भी न गिरी। और किस पर? सब कुछ, पूरी वर्षा किस पर हो रही थी? गोवर्धन के ऊपर। तो भगवान ने ये दिखा दिया कि जिसको पूजनीय अब तक ये लोग मानते थे ब्रजवासी, भगवान ने उनको दंडनीय बना दिया और गोवर्धन को कोई जानते तक नहीं थे, उनकी पूजा तक नहीं होती थी, तो भगवान ने गोवर्धन को पूजनीय बना दिया। तो कोई पूछे कि भगवान का दैनिक कार्य क्या है? यही है, भगवान का दैनिक कार्य यही है कि जो इंद्र जैसे घमंडी होते हैं उनको दंडनीय बनाना, और जो गोवर्धन जैसे विनम्र निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं भगवान की लीलाओं में, उनको पूजनीय बनाना। तो गोवर्धन ये 2 कारणों के वजह से पूजनीय हुए। कोऑपरेट्स विद द प्लान ऑफ कृष्णा, लिव्स टू सेल्फलेसली सर्व अदर्स। चरण छूने योग्य कौन है? जो अपने आचरणों से अपने आप को योग्य बनाए। परंतु यदि कोई व्यक्ति अपने आचरणों से पूजनीय नहीं या आदरणीय नहीं हो रहा, और इसके ऊपर यदि वो इसका इच्छुक है कि मेरे चरण स्पर्श वो मैं योग्य बनूं, तो एक है चरण, एक है आचरण और एक है पादतरण। तो जो बिना योग्यता के घमंड के द्वारा वो अपनी प्रशंसा चाहता है, तो भगवान पादतरण देते हैं। एक मुशायरा चल रहा था और मुशायरे में ये शख्स मंच पर विराजित हुए, तो इन्हें पता चला कि इनके जूते चुरा लिए किसी ने। तो मंच पर विराजित इन्होंने प्रारंभ किया, शायरी करने मैं मंच पर चढ़ा तो किसी ने मेरा जूता चुरा लिया। शायरी करने मैं मंच पर चढ़ा तो किसी ने जूता चुरा लिया। बार बार रिपीट कर रहा था ये लाइन। तो ऑडियंस में से एक व्यक्ति ने हाथ ऊपर किया और कहा, अजी जनाब आप शुरू तो कीजिए, इतने मिलेंगे कि गिनती भूल जाओगे। आचरण, चरण और पाद तरण। तो हमने पिछली बार ये विश्वामित्र मुनि और वशिष्ठ मुनि रामायण से ये प्रसंग लिया, जो कि एक ऐसा प्रसंग है जिसके अंदर पूजनीय, दंडनीय, हर प्रकार कि इमोशंस इंटरैक्शंस इस प्रसंग के अंदर हैं सीखने योग्य, जहां पर आप देखोगे शक्ति ऐश्वर्य सौंदर्य ज्ञान शान और शौकत विनम्रता क्षमाशीलता इत्यादि इत्यादि सब एक ही प्रसंग में समन्वित है. क्लैश ऑफ द टाइटंस, हु सेज दैट देयर इज नो एक्शन इन आवर वैदिक स्क्रिप्चर्स, देयर इज नो एडवेंचर इन आवर वैदिक स्क्रिप्चर्स. और ये तो केवल रामायण के अथाह सागर का एक बूंद है. बस हमारे वैदिक वांग्मय में से केवल एक छोटी सी बूंद ये प्रसंग है, जिसमें से हम यदि चाहें तो हम उस एक बूंद में डूब सकते हैं. ये विशेषता है हमारे वैदिक ग्रंथों की. तो हमने जो लेसन्स लिए 52 लेसन्स में से हमने पिछली बार मेरे ख्याल से 10 लेसन्स लिए थे. तो मिथिला पहुंचते हैं विश्वामित्र मुनि राम लक्ष्मण को लेकर, और वहां शतानंद ऋषि जब ये जानते हैं विश्वामित्र मुनि के मुख से कि उनकी माता अहिल्या का उद्धार प्रभु श्री राम ने किया, तो शतानंद ऋषि वो इतने कृतज्ञ हो जाते हैं, कृतज्ञता के भाव में वो गुणगान करते हैं अब विश्वामित्र मुनि का. और विश्वामित्र मुनि के विषय में वो कहते हैं कि ये एक ऐसे मुनि हुए जिन्होंने, हाँ इनके अतीत में बहुत कुछ हुआ, परंतु वर्तमान में ये एक ऐसे मुनि बने जो कभी स्तुति या प्रशंसा नहीं चाहते थे. स्तुति देवी ऑलवेज रिमेन्स अनमैरिड. और शतानंद ऋषि ने इस सलीके से विश्वामित्र मुनि का गुणगान किया कि विश्वामित्र मुनि का अतीत को लेकर उनके ही शिष्यों के सामने, राम लक्ष्मण के सामने और स्वयं के शिष्यों के सामने विश्वामित्र मुनि को एक गुरु का पद दिया. और यहां पर हम एक और लेसन सीखे कि जो बराबरी के होते हैं, बराबरी के जो हैं उनके सामने गुणगान करना वो सबसे कठिन है. एक्सपीरियंशियल लर्निंग इज ऑलवेज बेटर देन बुकिश नॉलेज. तो कथा प्रारंभ उन्होंने की कि विश्वामित्र मुनि जब वो राजा थे, कौशिक उनका नाम था, ऐसे बड़े सम्राट पराक्रमी अतिरति महारथी, एक दिन शिकार के लिए निकले तो उन्होंने उस वन में एक छोटी सी कुटिया देखी. वो गए, पता चला कि यहां पर कोई तपस्वी रह रहे होंगे, तो मैं अपने प्रणाम उन्हें देकर आऊं. तो पता चला यहां पर वशिष्ठ मुनि वो तपस्वी, ये जानते तक नहीं थे इन्हें. वशिष्ठ मुनि ने इनका स्वागत किया, और इनका ही नहीं इनकी पूरी सेना का और इनके 100 पुत्रों का. किससे? शबल, वो गाय जो कि कामधेनु गाय, जो कि समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई ये गाय. और फिर विश्वामित्र मुनि ने जब ये देखा कि ऐसा सत्कार एक ये छोटा सा तपस्वी, हालांकि वो छोटे से नहीं थे, परंतु विश्वामित्र मुनि को वो एक साधारण से तपस्वी प्रतीत हो रहे थे, अपनी सी छोटी सी कुटिया में इसके पास ऐसा ऐश्वर्य कैसे हो सकता है. तो विश्वामित्र मुनि के अंदर धीरे धीरे कृतज्ञता के भाव के बदले नफरत की भावना जागृत हो गई. सो देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन बीइंग ग्रेटफुल एंड बीइंग हेटफुल. और जब वो जबरदस्ती इस शबल गाय को घसीटने लगे, तो शबल गाय ने ये हमें शिक्षा दी कि शबल गाय वशिष्ठ मुनि के पास थी क्योंकि वशिष्ठ मुनि ने अपने चरित्र से और अपने उदाहरण से शबल गाय को भेंट रूप में भगवान से पाया था. यहां पर विश्वामित्र मुनि क्या कर रहे थे, वो जोर जबरदस्ती इस ऐश्वर्य को अपना बनाना चाहते थे। प्रॉस्पेरिटी कैन नाइदर बी फोर्सफुली ड्रैग्ड इन टू एनी वंस लाइफ नॉर ड्रैग्ड आउट ऑफ एनी वंस लाइफ। जब कोई जोर जबरदस्ती से मान सम्मान चाहता है, जैसे यहां विश्वामित्र मुनि वो उदाहरण प्रस्थापित करें जोर जबरदस्ती से, तो किसके समान है? जैसे कोई व्यक्ति कच्चे आम को लिया है, यहां पर कैरी कहते हैं आप लोग, तो कैरी को लिया है और उसे लाठी से मार मार कर पका रहा है। पका हुआ आम नरम होता है, तो इस व्यक्ति ने ये देखा कि ये कैरी नरम नहीं है तो पकी हुई नहीं है, तो मुझे अभी तुरंत इसे आम में परिणत करना है। तो लाठी से मार मार कर मार मार कर जब यदि कैरी को आम बनाने की जो कोशिश करता है वो इसी के समान है कि वो ऐसे ऐश्वर्य को, ऐसे मान सम्मान को अपने जीवन में जबरदस्ती डिमांड कर करके लाना चाहता है। देयरफॉर इट इज सेड वन हु डिमांड्स रिस्पेक्ट इज लाइक मार्केटिंग फेक गोल्ड। जब सोना नकली हो, जब हीरा नकली हो तो मार्केट करना पड़ता है, परंतु जब हीरा असली है, सोना असली है, तो अपने आप लोग जाते हैं, उसको मार्केट करने की जरूरत नहीं है। इसलिए जबरदस्ती डिमांडिंग रिस्पेक्ट इज लाइक ट्राइंग टू मार्केट फेक गोल्ड। When ambition crosses the fine line of ethics, then it turns into greed. There is nothing wrong in being ambitious. परंतु हर चीज की एक सीमा होती है, हर चीज का एक मापदंड होता है। श्रील प्रभुपाद के जीवन, जब वो अमेरिका में प्रचार कर रहे थे, वहाँ की एक ये लीला है, ये प्रसंग है। तो अमेरिका में एक जगह है हवाई, तो यहाँ एक श्रील प्रभुपाद के ही शिष्य तो प्रभुपाद के पास आए, प्रभुपाद मैं चाहता हूँ कि हवाई में गोविंदा रेस्टोरेंट मैं शुरू करूँ। प्रभुपाद ने कहा वेरी नाइस, आई गिव यू माय ब्लेसिंग्स। तो ये प्रभुपाद के शिष्य, इन्होंने गोविंदा रेस्टोरेंट शुरू किया हवाई उस जगह पर, बहुत से वहां पर टूरिस्ट भी आते हैं, तो इनका गोविंदा रेस्टोरेंट बहुत अच्छा चलने लगा, इतना अच्छा चलने लगा कि भर भर कर ज्यादातर अपने डिवोटीज ही वो लोग ज्यादा आते थे, भर भर कर आने लगे। तो ये बंदे ने क्या किया, अब ये धीरे धीरे एडवर्टाइज करने लगा कि ये रेस्टोरेंट मेरा है, ये गोविंदा रेस्टोरेंट मेरा है। तो पैम्पलेट छापने लगा, ब्रोशर छापने लगा, उस समय इंटरनेट नहीं था, नहीं तो वेबसाइट में छाप देता। तो ये गोविंदा रेस्टोरेंट मेरा है, तो सारे डिवोटीज प्रभुपाद के पास गए, बोले प्रभुपाद यू गेव योर ब्लेसिंग्स एंड दिस इज व्हाट ही इज डूइंग। तो प्रभुपाद ने उनको बुलाया और प्रभुपाद पूछे, सो आई इंट्रोड्यूस्ड यू टू लॉर्ड गोविंदा, फॉरगेट अबाउट गोविंदा रेस्टोरेंट, आई इंट्रोड्यूस्ड यू टू लॉर्ड गोविंदा, इज इट नॉट? यस प्रभुपाद। So then, what is your relationship with me? ये दीक्षित भक्त है, प्रभुपाद यू आर माय गुरु महाराज. सो इफ आई एम योर गुरु महाराज, विच मीन्स एवरीथिंग व्हाट इज योर्स बिलोंग्स टू मी, राइट? यस प्रभुपाद. सो हुम डज गोविंदा रेस्टोरेंट बिलोंग? इसने कहा दैट बिलोंग्स टू मी. प्रभुपाद के सामने प्रभुपाद को क्या कहता है? एवरीथिंग बिलोंग्स टू यू गुरु महाराज एक्सेप्ट दिस गोविंदा रेस्टोरेंट. तो प्रभुपाद ने देखा कि जब कोई व्यक्ति ऐसे घटियापन पर उतर आता है तो फिर इसके साथ वार्तालाप करना, प्रभुपाद ने सोचा कि ये मेरी औकात के बाहर है. तो फिर डिवोटीज आए कि क्या किया जाए. तो प्रभुपाद ने बहुत सुंदर जवाब दिया. प्रभुपाद ने कहा एक बार एक व्यक्ति था जिसने एक नदी के ऊपर ब्रिज बनाया. अ मैन बिल्ट अ ब्रिज ओवर अ रिवर एंड ही बिकेम सो प्राउड दैट ही हैज बिल्ट दिस ब्रिज ओवर द रिवर that the Lord wanted to teach him a lesson. So what the Lord did, he didn't destroy the bridge, he dried up the river. The Lord didn't destroy the bridge, dried up the river. To Prabhupada bole, this is how Krishna, he has a very classy way of teaching someone lesson. He will do it in due course of time. Aur dheere dheere kya hua, iske restaurant mein customer jana band ho gaye. What Krishna did, didn't destroy the bridge, dried up the river. So when ambition crosses the fine line of ethics, that turns into greed. असनम में वसनम में जाया में बंधु वर्गो में इति में ते कुर्वाणाम काल वृको हंति पुरुष अजम. नीति शास्त्र का श्लोक है जहां पर बताया गया है कि जो व्यक्ति ये कहता रहता है कि ये मेरा, ये देखो, ये बूट मेरा देखो, ये सूट मेरा देखो, ये पैंट मेरा देखो, ये शर्ट मेरा देखो, ये गाड़ी मेरी देखो, ये बंगला मेरा देखो, मैं, तो जो मैं करता है वो बकरी के समान. इति मैं ते कुर्वाणाम काल वृको हंति पुरुष अजम. होता क्या है कि बकरी जितना मैं करती है, जो भेड़िया होता है वुल्फ, उसको ज्यादा आकर्षित करती है. तो इसलिए यहां पर जब जबरदस्ती विश्वामित्र मुनि शबल गाय को अपना बनाना चाहते थे तो वशिष्ठ मुनि इन्होंने शबल गाय से कहा कि मैंने तुम्हें एम्पावर किया है, नाउ यू हैव टू डिफेंड योरसेल्फ. सो एन एम्पावर्ड डिसाइपल ऑफ अ ट्रू गुरु डिफेंड्स इटसेल्फ. यहां पर हर सेल्फ ये गाय. और फिर इस शबल गाय ने दिखाया विश्वामित्र मुनि को कि जो गाय दूध दे सकती है और जो गाय तुम्हारी सेवा कर सकती है, जब उसी गाय पर तुम प्रहार करोगे तो वो गाय से शस्त्र निकलेंगे और वो गाय तुम्हें तुम्हारे आंखों के सामने परास्त करेगी. इसलिए जब हम हमारे जीवन में कुछ ऐसे प्रसंगों से, ऐसे दौर से गुजरते हैं, तो ये सारे प्रसंग, ये सारे जो महानुभाव हैं, जैसे वशिष्ठ, विश्वामित्र मुनि, ये शबल गाय, ये हमें ये ऐसी शिक्षाएं सिखाते हैं. इसलिए व्यक्तिगत रूप से एक हाल ही में मेरा साक्षात्कार मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा. Whenever someone offends me, I take my soul so high where the offense cannot reach me. Whenever someone offends me, I take my soul so high where the offense cannot reach me. हमारे यहाँ पे जो आम का पेड़ है, यहाँ पे अक्सर मैंने देखा गर्मियों के मौसम में चील, चील पक्षी आप जानते ना, ईगल, बाज जिसको बोलते हैं, तो कई बार मैंने देखा चील पक्षी, वो जब कभी भी ये चील पक्षी इस वृक्ष के ऊपर बैठने का प्रयास करता, कौवे आकर उसको कांव कांव करके, आपने देखा कभी यहां पे इस आम के पेड़ पर चोंच कौवे मारते, तो उसको देखकर एक दफा मैं यही सोच रहा था, व्हेन ईगल्स आर अटैक्ड दे डोंट फाइट विथ क्रोज दे फ्लाई हाई. ईगल्स फ्लाई हाई, वो सोचते हैं कि कौओं से लड़ना ये मेरी औकात नहीं है, इसलिए दे फ्लाई हाई, अपनी उड़ान ऊपर करो. व्हेन समवन ऑफेंड्स यू, इफ यू आर द पर्सन हु इज द विक्टिम एंड यू आर द पर्सन हु हैज नॉट इंड्यूस्ड द अदर पर्सन टू ऑफेंड, देन यू सिंपली रेज योर कॉन्शियसनेस सो हाई. कुछ साल पहले हम लोग गुरुवायूर गए थे, तो वहां पर मैंने देखा गुरुवायूर के मंदिर में भगवान गुरुवायूर को हाथी पर विराजित किया जाता है, रोज हाथी पर उनकी शोभा यात्रा निकलती है. मायापुर में भी मैंने देखा कि हाथी के ऊपर भगवान के उत्सव मूर्ति को वो लोग शोभा यात्रा में निकालते हैं. तो वहां पर मैं देख रहा था कि हाथी के ऊपर जब भगवान विराजित होते हैं और हाथी जब भगवान को अपने पीठ पर सुसज्जित कर कर निकलता है तो बहुत से कुत्ते भौंकते हैं. कुत्तों का काम क्या है? भौंकना. तो बहुत से कुत्ते भौंकते हैं. तो मैं जब देख रहा था तो मुझे ये लगा कि देखो हाथी वो बिल्कुल भी वो एक आवाज नहीं कर रहा है, वो कुत्तों के ऊपर न तो सूंड मार रहा है न उनकी ओर देख रहा है. तो इसलिए जो हाथी होते हैं अपने पीठ पर भगवान को सुसज्जित किए हैं, जो हाथी के समान भगवान के मान सम्मान को बढ़ाने में लगे होते हैं उस समय कुत्ते बहुत भौंकते हैं. परंतु हाथी जो कहते हैं ना, हाथी का जो कारवां है वो चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, वो अपनी मौज में चलता है, क्योंकि उसकी मौज क्या है? भगवान का मान सम्मान बढ़ाना, वो उसकी मौज है. इसलिए हाथी जो हैं वो हर समय भगवान के मंदिरों में विराजित होते हैं और कुत्ते बड़े बंगलों में. तो विश्वामित्र मुनि, उनकी हेल्पलेसनेस क्या थी? फाइनली जब विश्वामित्र मुनि के पूरी सेना परास्त हुई, विश्वामित्र मुनि के स्वयं के पुत्र 100 पुत्रों को वशिष्ठ मुनि ने हुंकार से परास्त कर दिया, तो हमने देखा ये 4 उदाहरण दिए गए हैं, मेटाफर्स दिए गए हैं रामायण में. दिस इज हाउ हेल्पलेस विश्वामित्र मुनि फेल्ट. एन ओशन विदाउट वेव्स, सर्पेंट विदाउट फैंग्स, बर्ड विदाउट विंग्स, एक्लिप्स्ड सन विथ नो स्पार्कल. तो अब विश्वामित्र मुनि, न तो उनके पुत्र वहां पर, हालांकि उनके और भी बहुत पुत्र थे, परंतु उनके साथ जो 100 पुत्र गए थे वो हुंकार से खत्म हुए, उनकी पूरी सेना परास्त हो गई जो उनके साथ गई हुई थी. अकेले अब विश्वामित्र मुनि लौटते हैं अपने राज्य में, और अपने राज्य में वो जो लौटे, एक ही शब्द विश्वामित्र मुनि के जहन में, और वो कौन सा? बदला. वशिष्ठ मुनि से बदला लेना है मुझे। तो बदले की भावना में उन्होंने किया क्या, उन्होंने एक निर्णय लिया। कौन सा निर्णय लिया? कि मैं अपने राज्य का परित्याग करूंगा और मैं वन में जाकर अब कठोर तपस्या करूंगा। परंतु किस लिए? कठोर तपस्या किस लिए? कि फिर उस तपस्या का जो फल मुझे प्राप्त होगा, उस फल से मैं अब मजा फिर चखाऊंगा। किसे? वशिष्ठ मुनि को। तो वो जो तपस्या उनकी, उसके पीछे कोई सात्विक भाव नहीं था, उस तपस्या के पीछे वो बदले की भावना थी उनकी। तो इसलिए यहां पर हम जो अगला 11वां लेसन लेते हैं, टेकिंग डिसीजंस विथ अ डिस्टर्ब्ड माइंड इज लाइक ईटिंग व्हाइल रनिंग। हमारे आर्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग में मैंने सुनाया था, नेवर प्रॉमिस समवन व्हेन यू आर ओवरली हैप्पी, नेवर स्पीक व्हेन यू आर एंग्री, एंड नेवर मेक डिसीजंस व्हेन यू आर डिप्रेस्ड। यहां पर जो बदले की भावना विश्वामित्र मुनि के अंदर, जिसके वजह से उन्होंने अपने उस समय के वरिष्ठ पुत्र को राजा बना दिया रातों रात, और राज्य का परित्याग कर निकल गए, पूरे राज्य को छोड़कर, उस सिंहासन को छोड़कर वो निकल गए तपस्या करने। तो अब यहां पर वो ऐसी कठोर तपस्या कर रहे थे भगवान शिवजी, भगवान शिवजी को प्रसन्न करने के लिए। परंतु उनके अंदर, रामायण में बताया गया, ग्रंथकार कहते हैं कि उनके अंदर जो द्वेष और बदले की भावना थी वशिष्ठ मुनि के प्रति, तो वो उन्हें वो तपस्या करा रही थी, वो बदले की भावना उन्हें वो तपस्या करा रही थी, और धीरे धीरे उनका पूरा शरीर जीर्ण हो रहा था उस बदले की भावना के वजह से। देखिए, एक महिला, एक मां, उसके विषय में अमेरिका में एक रिपोर्ट आई थी कि ये अपने छोटे से शिशु को स्तनपान कराती थी, परंतु हुआ ऐसा कि कुछ हफ्ते जब वो स्तनपान करा रही थी, उस समय उसका पारा चढ़ा हुआ था कुछ कारणों के वजह से, बहुत वो क्रोध में स्तनपान करा रही थी। तो वो बच्चा जो स्तनपान कर रहा है अपने स्वयं की मां का, वो दूध उसके लिए टॉक्सिक हो गया और उसको आईसीयू में भर्ती होना पड़ा। दैट मिल्क बिकेम टॉक्सिक मिल्क। देयरफॉर द तपस्या विच विश्वामित्र मुनि वॉज डूइंग वॉज टॉक्सिक इन नेचर। और वशिष्ठ मुनि, उनकी तपस्या को कहा गया है उनका तपोबल। तो यहां अब अगला लेसन हम ये सीखते हैं, द मोर अटेंशन वन पेज टू पास्ट इंसिडेंट्स द बिगर दे अपियर। हमारा जो अतीत है, उस अतीत को हमें विजिट करना चाहिए सीखने के लिए। डोंट सेटल, डोंट सेटल इन योर पास्ट, विजिट योर पास्ट। परंतु यहां पर विश्वामित्र मुनि, जो इतने वर्षों तक उन्होंने तपस्या की उस अतीत को ध्यान में रखते हुए कि मेरे साथ वशिष्ठ ने ये किया, और उस अतीत को ध्यान में रखते हुए जो तपस्या कर रहे थे, तो इसलिए क्या हो रहा था कि वो जो पूरी तपस्या, जैसे मैंने कहा कि वो टॉक्सिक तपस्या बन रही थी उनकी, और उनके मन में केवल एक ही विचार था कि मुझे इस तपस्या से और कुछ नहीं चाहिए बल्कि एक ही चीज चाहिए, वशिष्ठ मुनि उनका अंत। हाल ही में एक विद्यार्थी मुझे एक प्रश्न पूछ रहा था। उसने कहा कि प्रभु जी पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, एग्जाम्स पास में आ रहे हैं, रातों को नींद नहीं आ रही है। मैंने कहा क्या हुआ? तो टिपिकल स्टोरी, गर्लफ्रेंड ने दगा दे दिया। तो उसने कहा मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे दगा दे दिया और मेरी क्लास में है वो और रोज दिखती है मुझे और किसी और के साथ। तो जब वो किसी और के साथ दिखती है तो लोग कहते हैं ना, तुम मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और की होगी तो मुश्किल होगी। तो इसके मन में इसी प्रकार का भाव था कि वो किसी और के साथ, और वो चिढ़ाने के लिए बार बार वो मेरे पास आके पूछती है, तुम ठीक तो हो ना? तो पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, नींद नहीं आ रही है, भूख नहीं लग रही है, कहीं मैं तपस्वी तो नहीं हो गया? तो मैंने एक उदाहरण से इस विद्यार्थी को समझाने की कोशिश की। मैंने कहा देखो, तुम कॉलेज में ये सब करने आए हो, तुम ओरिजिनली जब कॉलेज में भर्ती हुए तो क्या सोचकर भर्ती हुए थे? वो विचार ध्यान में है? वहां ध्यान। तो मैंने उनको पूछा कि क्या सूर्य का जो गोला है उसको तुम एक चवन्नी से ढक सकते हो? आजकल तो चवन्नी नहीं आती ना, पहले आती थी छोटी सी चवन्नी। तो मैंने पूछा कि उसको भी पता चवन्नी क्या होता है प्रभु जी? तो मैंने कहा 25 पैसे का कॉइन आता था पहले, छोटा सा। तो मैंने पूछा सूर्य के गोले को क्या कोई चवन्नी से ढक सकता है? उसने कहा बिल्कुल नहीं, परंतु हां भी जब उस चवन्नी को तुम अपने आंखों के इतने निकट लाओगे, इतने निकट लाओगे, तो वो चवन्नी सूर्य के इतने बड़े गोले को आच्छादित कर सकती है। तो उसी प्रकार से मैंने कहा कि ये जो तुम कह रहे हो कि किसने तुमको दगा दे दिया, वो चवन्नी के समान है, उसको तुम इतना निकट लाकर देख रहे हो, तो तुम्हारा जो करियर है इस कॉलेज में जो कि सूर्य के समान हो, उसको ये चवन्नी ढक रही है। द मोर अटेंशन वन पेज टू पास्ट इंसिडेंट्स द बिगर दे अपियर। और विश्वामित्र मुनि अब जब भगवान शिवजी को प्रसन्न किए, तो भगवान शिवजी को प्रसन्न करने के पश्चात उन्होंने भगवान शिव से मांगा क्या कि मुझे जितने पूरे विश्व में, पूरी सृष्टि के जितने बेशकीमती शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र है वो मुझे दे दो, वो सिखा दो चलाना। Hatred is equally powerful as the emotion of love. उनके नफरत के हम शुक्रगुजार हैं, उनके नफरत के हम शुक्रगुजार हैं, कम से कम नफरत के बहाने हमें याद तो किया। Hatred is equally powerful as the emotion of love. अब ये अस्त्र शस्त्र जो शिवजी से उन्हें प्राप्त हुए, महादेव हैं शिवजी, कोई साधारण अस्त्र शस्त्र नहीं दिए उन्होंने विश्वामित्र मुनि को। तो ये सब प्राप्त करने के पश्चात अब विश्वामित्र मुनि कौन सा रास्ता पकड़ते हैं? वो रास्ता जो उन्होंने अपने मन में सैकड़ों बार लिया था, वशिष्ठ मुनि की कुटिया का रास्ता। दैट पाथ विच विश्वामित्र मुनि हैड ट्रेवल्ड मिलियंस ऑफ टाइम इन हिज माइंड मेंटली, नाउ ही इज फिजिकली वॉकिंग विथ ऑल दी वेपन्स, सारे मिसाइल्स, सारे वेपन्स लेकर विश्वामित्र मुनि निकले वशिष्ठ मुनि के आश्रम की ओर. और उधर जाते ही उन्होंने सबसे पहले जो वशिष्ठ मुनि के शिष्य, उनकी जो कुटिया थी, झोपड़ी जिसको आप कहोगे, तो उन सबको अपने शस्त्रों से उन पर आग लगा दी. सेकेंडों में ये सारी जो कुटिया, यहां तक कि वशिष्ठ मुनि उनके स्वयं की कुटिया राख हो गई, जलकर भस्म. और सारे जो शिष्य वशिष्ठ मुनि के उस आश्रम में, वो सब डर के मारे भागने लगे. और उस समय वशिष्ठ मुनि वो बाहर आते हैं. और वशिष्ठ मुनि जब बाहर आते हैं तो वो सब जलाया क्यों? ताकि वशिष्ठ बाहर आए, क्योंकि असली प्रहार वशिष्ठ मुनि पर करना है. वो शिष्यों के ऊपर प्रहार नहीं कर रहे थे, वो तो शिष्य तो डर के मारे भाग गए. असली प्रहार विश्वामित्र मुनि को वशिष्ठ मुनि के ऊपर करना था. तो जब वशिष्ठ मुनि बाहर आए तो सारे अब जो विशेष अस्त्र शस्त्र वशिष्ठ मुनि को मारने के लिए बचाकर रखे थे विश्वामित्र मुनि ने, अब वो छोड़े. तो वशिष्ठ मुनि मुस्कुराते हुए देखने लगे और वो ये सोच रहे हैं कि यहां विश्वामित्र मुनि ने मेरी कुटिया जलाई, मेरे शिष्यों की कुटिया जलाई, परंतु इस अग्नि से ज्यादा तो इनके हृदय में जो अग्नि दहक रही है वो इनको जला रही है. इसलिए वशिष्ठ मुनि वो केवल मुस्कुराने लगे विश्वामित्र मुनि के ऊपर, परंतु उस मुस्कान के पीछे वशिष्ठ मुनि तरस खा रहे थे विश्वामित्र मुनि के ऊपर. क्या खा रहे थे? तरस. ही वॉज फीलिंग पिटी ऑन विश्वामित्र मुनि कि शिवजी के द्वारा दिए गए अस्त्र शस्त्र का तुम क्या उपयोग कर रहे हो, महादेव के द्वारा दिए गए अस्त्र शस्त्र का तुम क्या उपयोग कर रहे हो. और उस समय वशिष्ठ मुनि ने अपना ब्रह्मदंड सामने किया. अब यहां पर देखिए, वशिष्ठ मुनि, उनके पास कोई बड़ी आर्मरी नहीं थी अस्त्र शस्त्र की, उनके पास केवल एक उनका ब्रह्मदंड था. और ज्यादा बड़ा नहीं था वो ब्रह्मदंड, बस छोटा सा ब्रह्मदंड. तो विश्वामित्र मुनि सोचने लगे कि ये साधु ये ब्रह्मदंड से अपने आप को बचाएगा. विश्वामित्र मुनि हंसते हंसते सारे अस्त्र शस्त्र फेंकने लगे और देखते देखते ये जो ब्रह्मदंड वशिष्ठ मुनि का, सारे अस्त्र शस्त्र को निगल लिया. इनके सारे अस्त्र शस्त्रों को निगल लिया. और विश्वामित्र मुनि एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक फेंके जा रहे हैं, शस्त्र छोड़े जा रहे हैं, और एक के बाद एक सारे शस्त्र वशिष्ठ मुनि के ब्रह्मदंड ने निगल लिए. अब विश्वामित्र मुनि के अंदर की जो द्वेष की अग्नि, उसकी कोई सीमा नहीं थी. और उन्होंने जो सर्वोत्तम अस्त्र है ब्रह्मास्त्र, उसे बचाकर रखा था, क्योंकि उन्हें डर था कि हो सकता है कि मेरे पहले के अस्त्र शस्त्र वो काम ना इनके ऊपर आए. परंतु ब्रह्मास्त्र जो कि पूरे सृष्टि में सर्वोत्तम अस्त्र है, वो ब्रह्मास्त्र छोड़ा. और ब्रह्मास्त्र छोड़ा, ब्रह्मदंड आगे करते हुए वशिष्ठ मुनि ने उस ब्रह्मास्त्र को भी पी लिया. वशिष्ठ मुनि के ब्रह्मदंड ने उस ब्रह्मास्त्र को भी निगल लिया. ये था विश्वामित्र मुनि का सबसे बड़ा इंसल्ट. सबसे बड़ा इंसल्ट क्या इंसल्ट था कि पहले एक साधारण सी गाय ने मुझे परास्त किया था, अब एक लाठी ने। पहले एक गाय ने परास्त किया, अब एक लाठी ने परास्त किया। जैसे मान लो कि कोई पूरे न्यूक्लियर वेपन्स लेकर आए और कोई चौकीदार अपनी लाठी से न्यूक्लियर वेपन को निगल ले, तो यहां पर विश्वामित्र मुनि महादेव से प्राप्त न्यूक्लियर मिसाइल्स लेकर आए थे। न्यूक्लियर मिसाइल भी कुछ नहीं है ब्रह्मास्त्र के सामने। तो ये विश्वामित्र मुनि की अल्टीमेट इंसल्ट हुई। इसलिए 14वां लेसन विश्वामित्र मुनि सिखाते हैं, द डिग्री ऑफ इंसल्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू द साइज ऑफ द पर्सन कॉजिंग इट। कि अक्सर जो हमारे गुरु वर्ग के हैं, जब वो हमें ठीक करते हैं, उनको हम गुरु मानते हैं, तो हाँ हम स्वीकृति देते हैं। परंतु जिनको हम तुच्छ मानते हैं, क्या मानते हैं? तुच्छ मानते हैं। जब किसी तुच्छ व्यक्ति से जब कोई परास्त होता है तो वो उस व्यक्ति के लिए असहनीय हो जाता है। इसलिए दक्ष यज्ञ में 4वें स्कंद में दक्ष यज्ञ है। अब देखो, दक्ष प्रजापति जो कि बहुत बड़े पद पर प्रजापति हैं, वो तो इतने बड़े पद पर, और वो जब यज्ञ अनुष्ठान किया करते थे तो सभी बड़े बड़े दिग्गज आते थे, यहां तक कि ब्रह्मा जी भी आते थे। और नियम ऐसा था कि जब भी यज्ञ अनुष्ठित होता तो दक्ष प्रजापति सबसे लास्ट में एंट्री करते, और जैसे ही दक्ष प्रजापति एंट्री करते तो सभी वो अपने अपने आसनों से खड़े होकर दक्ष प्रजापति को अपना मान सम्मान देते। तो इस दक्ष यज्ञ में हुआ क्या कि उन्होंने जब प्रवेश किया तो सभी खड़े हुए अपने अपने आसन से, इनके स्वयं के दामाद, और साधारण व्यक्ति नहीं है, परंतु जो ससुर होता है वो हर समय अपने दामाद को साधारण ही समझता है, चाहे वो दामाद भगवान शिव जी क्यों ना हो। तो दक्ष प्रजापति के दामाद हैं भगवान शिव जी। तो ऐसे महादेव जो कि देवादि देव हैं, ऐसे महादेव खड़े नहीं हुए आसन से तो दक्ष प्रजापति सांप की तरह फुफकारने लगा। ऐसे वो तिलमिलाने लगा, और भगवान शिव जी ने कुछ कहा भी नहीं। ऐसा नहीं कि भगवान शिव जी कुछ दक्ष प्रजापति को उल्टा सीधा गालियां कुछ दे रहे थे। भगवान शिव जी अपना भगवान पर ध्यान कर रहे थे, उनके आराध्य देव पर ध्यान कर रहे थे, और गाली पर गाली, गाली पर गाली दक्ष प्रजापति सुनाने लगे। वो भागवत में सब कुछ वर्णन है, गालियां भी वर्णन है संस्कृत में सब। तो क्यों दक्ष प्रजापति इतना तिलमिला उठे, क्यों इतना क्रोधित हुए दक्ष प्रजापति? क्योंकि दक्ष प्रजापति ने क्या देखा, ये मेरा जमाई, मेरी बेटी का पति, ये खड़ा क्यों नहीं हुआ? इसकी औकात अपने ससुर के सामने खड़ा नहीं होता। तो ये जो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, द डिग्री ऑफ इंसल्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू द साइज ऑफ द पर्सन कॉजिंग इट। जंगल में दो चींटियां घूम रही थी और सामने से हाथी को आता देखा उन्होंने। चींटियों ने हाथी को आता देखा तो एक चींटी ने दूसरे चींटी को कहा, कुचल डालो साले को। तो दूसरी चींटी ने कहा, छोड़ अकेला है। तो जब व्यक्ति का क्या पद है उसके अनुसार वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट उसका ऑफेंस माना जाता है। 15वां लेसन हम वशिष्ठ मुनि से सीखते हैं। अ प्योर ब्राह्मणा'स प्यूरिटी इज फार मोर पावरफुल देन ऑल द पावर्स पुट टुगेदर ऑफ अ प्राउड क्षत्रिय। तो विश्वामित्र मुनि वो अपनी तपस्या से जो उन्होंने अस्त्र शस्त्र हासिल किए थे, जो समृद्धि उन्होंने हासिल की थी, तो यहां पर ये युद्ध किस में लड़ा जा रहा था? शुद्धता और समृद्धि। एक तरफ वशिष्ठ मुनि की शुद्धता और दूसरी ओर विश्वामित्र मुनि की समृद्धि। एक ओर वशिष्ठ मुनि इनके शास्त्र का बल और दूसरी ओर विश्वामित्र मुनि के शस्त्र का बल। शास्त्र बल, शस्त्र बल, शुद्धता, समृद्धि, झूठी प्रशंसा, ये विश्वामित्र मुनि चाहते थे कि मेरी प्रशंसा हो। मुझे ये गाय क्यों चाहिए? क्योंकि मैं राजा हूं और मैं राजा होने की वजह से जो भी प्रजा में है वो मेरा है, मेरा होना चाहिए। तो जबरदस्ती जबरदस्ती वो मान सम्मान को छीनना चाह रहा था। तो झूठी प्रशंसा और इसके विपरीत विनम्रता वशिष्ठ मुनि की। सो दिस वॉज द बैटल गोइंग ऑन बिटवीन दीज टू टाइटन्स। शस्त्र शास्त्र, शुद्धता समृद्धि, झूठी प्रशंसा और विनम्रता। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, 16वां लेसन, कि जब विश्वामित्र मुनि ने यह देखा कि महादेव शिवजी के द्वारा दिए गए सारे अस्त्र शस्त्र इंक्लूडिंग ब्रह्मास्त्र कुछ काम ना आया, तो उन्हें समझ में आया क्यों इनके पास ये ब्रह्मदंड क्या है। पहले वो गाय के पीछे थे, ये गाय चाहिए, गाय चाहिए, अब ये ब्रह्मदंड क्या है, इसके अंदर इतनी शक्ति कैसे आई? तो अब मुझे ब्रह्मदंड मैं कैसे हासिल करूं? तो उन्होंने गूगल किया, पता लगाया कि ब्रह्मदंड कैसे हासिल किया जाता है। तो ब्रह्मदंड हासिल करने के लिए तुम्हें ब्रह्म ऋषि होना होगा, वो पोस्ट तुम्हें प्राप्त करनी होगी, ब्रह्म ऋषि की पोस्ट, जो कि वशिष्ठ मुनि वो ब्रह्म ऋषि थे। तो अब इनका अगला एम्बिशन, अगला गोल क्या है कि मुझे अब ब्रह्म ऋषि बनना है। अब तक देखिए अकल ठिकाने नहीं आई, इतना होने के बावजूद, दो बार परास्त होने के बावजूद नहीं, और वो दहकने लगी वो द्वेष की अग्नि कि अब मैं ब्रह्म ऋषि बनकर दिखाऊंगा। तो क्या लेसन है यहां पर? ट्राइंग टू बिकम समवन एल्स बाय चीप इमिटेशन इज इंसल्टिंग द क्रिएटर। सबको भगवान ने एक बहुत विशेष तरीके से बनाया है। जब हम किसी दूसरे की नकल कर किसी दूसरे की तरह बनना चाहते हैं, तो जो भगवान ने हमें जिस विशेषता से बनाया है, हम भगवान का अपमान कर रहे हैं। दैट्स कॉल्ड चीप इमिटेशन। श्रील प्रभुपाद उदाहरण दिया करते थे कि यदि कोई महिला अपने पेट में तकिए बांधकर प्रसव वेदना से चिल्लाने लगे, लेबर पेन, परंतु पेट पर तकिया बांधा है, और चिल्ला रही चिल्ला रही चिल्ला रही है कि क्या वो वाटर बैग फट गया है, अभी मुझे हॉस्पिटल ले जाओ, मैटरनिटी वार्ड ले जाओ. तो प्रभुपाद ने उदाहरण दिया, व्हाट विल कम आउट? ओनली पिलो. व्हाट विल टेक बर्थ इज ओनली पिलो. सो इवन इफ समबडी फेक्स लेबर पेन, इफ देर इज नो बेबी इनसाइड, बिकॉज इन ऑर्डर टू गिव बर्थ टू अ बेबी वन हैज टू हैव पेशेंस फॉर 9 months, वन हैज टू हैव प्रॉपर कंसेप्शन. फोर्सिंग अ बेबी इज लाइक फेकिंग लेबर पेन, एंड फेक लेबर पेन्स विल गिव बर्थ टू कॉटन पिलोस. दैट्स इट. तो विश्वामित्र मुनि ने अब ठान लिया कि मुझे ब्रह्म ऋषि होना है. तो वो दक्षिण की ओर निकले, दक्षिण दिशा की ओर निकले कि मैं दक्षिण दिशा में जाऊंगा और वहां पर ऐसी कठोर तपस्या करूंगा. और अब शिवजी नहीं, क्योंकि शिवजी वो मुझे कुछ ऐसा दे ही नहीं सके, तो शिवजी को रिजेक्ट. देखो, जो झूठी प्रशंसा के पीछे होता है वो दल बदलू होता है. जिसको पूजनीय मानता है उसने उसकी पूरी इच्छा पूरी नहीं की, चल तू बाहर, दूसरा कौन है. तो अब ब्रह्मा जी, शिवजी नहीं चाहिए मुझे, शिवजी ने मेरी इच्छा पूरी नहीं की, मुझे जो चाहिए था उल्टा इंसल्ट करा दिया मेरा. उनके भरोसे, शिवजी के भरोसे मैं गया था वशिष्ठ को परास्त करने के लिए, यहां पर पूरा फ्लॉप शो हो गया मेरा. तो इसलिए शिवजी आउट ऑफ द लिस्ट. अभी कौन? ब्रह्मा जी. अभी ब्रह्मा जी को मैं अपना आराध्य मानूंगा और ब्रह्मा जी से वरदान लेकर मैं ब्रह्म ऋषि बनूंगा. अब हम विश्वामित्र मुनि को कुछ समय के लिए उनकी तपस्या करने देते हैं, क्योंकि टाइम लगेगा ना. तो इसलिए अभी साउथ गए हैं, उधर भी जाने में टाइम लगता है. तो साउथ में गए तपस्या करने के लिए, तो उनको हम थोड़ा तपस्या करने छोड़ देते हैं. हम चलते हैं अयोध्या, और साइमल्टेनियसली अयोध्या में कुछ हो रहा था इक्ष्वाकु वंश में. तो इक्ष्वाकु वंश में एक राजा हुए जिनका नाम त्रिशंकु, आपने बहुत सुना होगा त्रिशंकु के विषय में. तो अब हम लोग कैमरा ले चलते हैं अयोध्या त्रिशंकु के ऊपर. ये त्रिशंकु, ये महानुभाव कौन है इक्ष्वाकु वंश के? क्योंकि आगे चलकर ये स्टोरी का कनेक्शन आएगा, इसलिए सबसे रोमांचित स्टोरी है ये रामायण में. अगर आपको बहुत पुलकित होना है सुनकर कुछ प्रसंग, तो ये इसके अंदर. तो त्रिशंकु ये इक्ष्वाकु वंश के एक ऐसे राजा हुए जो कि दिखने में इतने सुंदर कि पूरी पृथ्वी पर त्रिशंकु महाराज के तरह सौंदर्य किसी का नहीं था. इतने सुंदर, और न केवल दिखने में इतने सुंदर बल्कि इतने पराक्रमी, अपनी युवावस्था में अधिकांश समय त्रिशंकु महाराज का आईने के सामने जाता, अपने राज सिंहासन पर बैठने से ज्यादा वो आईने में अपने आप को निहारते रहते, इस एंगल से उस एंगल से कि मैं सब एंगल से सुंदर दिख रहा हूं कि नहीं दिख रहा हूं, और निहारते हुए अपने स्वयं का गुणगान करते रहते कि मेरी तरह कोई सुंदर नहीं है. असनम में, वसनम में, जाया में, बंधु वर्गो में मेरे तरह कोई सुंदर नहीं है. अपनी सुंदरता को निहारते हुए. तो त्रिशंकु के मन में एक दफा, त्रिशंकु जब अपने आप को निहार रहे थे, तो त्रिशंकु के मन में एक ऐसा विचार आया कि त्रिशंकु को लगा बस ये परमात्मा द्वारा प्रेरित विचार है। क्या विचार आया? क्यों ना मैं इसी शरीर, ये सहशरीर मैं स्वर्ग को प्राप्त हूं। अब देखिए, स्वर्ग को कौन प्राप्त हो सकता है? अगर प्राप्त भी होगा तो उसको पहले मरना होगा ना। इसलिए कहा जाता है कलयुग इज ऑल्सो फेमस फॉर पीपल हु वॉन्ट टू गो टू हेवन विदाउट डाइंग। ये त्रिशंगु क्लब के मेंबर्स हैं। तो ये त्रिशंकु, अचानक इसको जब ये विचार आया कि क्यों मरना नहीं चाहता है वो, क्योंकि मरूंगा तो ये सुंदरता मेरी, क्योंकि मुझसे सुंदर तो कोई है ही नहीं, स्वर्ग में भी कोई नहीं होगा, तो मैं स्वर्गवासियों को जाकर दिखाऊं कि मैं कितना सुंदर हूं, ताकि वो भी पहचान जाए कि हम भी इसके सामने फीके हैं। इतना घमंड उसको अपने सौंदर्य के ऊपर, त्रिशंकु को। तो यहां पर ये क्या लेसन है? लुकिंग फॉर शॉर्टकट्स इन लाइफ इज अनदर फॉर्म ऑफ हिपोक्रेसी। साधना भक्ति में भी जब हम धीरे धीरे साधना भक्ति में शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, तो हो क्या रहा है कि शॉर्टकट्स ढूंढना मतलब हम प्राइस नहीं पे करना चाहते कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने की। जैसे श्रील प्रभुपाद अपने लेटर्स को, उस समय तो इंटरनेट नहीं था, तो सारे लेटर्स बाय पोस्ट भेजा करते थे। तो प्रभुपाद के सेक्रेटरी, प्रभुपाद डिक्टेट करते थे लेटर्स, और वो लेटर्स टाइप होते थे, और हर एक लेटर का रिप्लाई प्रभुपाद करते थे, और फिर प्रभुपाद के सेक्रेटरी उनको एनवलप में डालकर सील कर पोस्ट करते थे। तो प्रभुपाद के कमरे में ये प्रभुपाद के सेक्रेटरी, प्रभुपाद के ही शिष्य, तो वो क्या कर रहे थे, सारे लेटर्स को एनवलप में डाल रहे थे और अपने थूक से, जनरली करते ना, थूक से एनवलप का जो गोंद है उसको गीला करके एनवलप को चिपका रहे थे। प्रभुपाद ने देखा, प्रभुपाद क्या, व्हाट इज दिस, दिस इज मुची, ये क्या गंदापन है, ये थूक लगा रहे हो, एक कटोरी में पानी लो, पानी से उसको गीला करो। तो अब वो गए, कटोरी में पानी लेकर आए, और इतने सारे लेटर से पानी लगा लगा के प्रभुपाद नहाने गए बाथरूम में, तो कटोरी का पानी खत्म हो गया, और अंतिम एनवलप अब उसको चिपकाना बाकी था। तो उन्होंने देखा प्रभुपाद भी नहीं है, पानी भी खत्म हो गया है, लिया थूक लगाने के लिए, अपने जीप पे लगाने गए, प्रभुपाद बाथरूम से बाहर आए, और प्रभुपाद ने फिर कहा, आई टोल्ड यू देयर इज नो शॉर्टकट टू रिसीव द मर्सी, देयर इज नो शॉर्टकट टू रिसीव द मर्सी। तो यहां पर त्रिशंकु जो चाहते थे कि मैं शॉर्टकट, जैसे रावण का भी यही था कि मैं एक सीढ़ी बना लूं। अब देखो क्या उसका आइडिया, क्या प्रोजेक्ट लिया उसने कि मैं पृथ्वी से स्वर्ग तक सीढ़ी बना लूं। हम राधा गोविंद महाराज का लेक्चर सुन रहे थे पिछली बार ड्रेसिंग करते समय, तो राधा गोविंद महाराज कह रहे थे कि मान लो रावण अगर वो सीढ़ी भी बना लेता तो कितने स्टेप्स उस पर होते, चढ़ कौन पाता था उतना, स्वर्ग तक कितने स्टेप्स होते हैं? आजकल एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर के लिए लिफ्ट लगाना पड़ता है, तो इमेजिन करो कि अगर वो बना भी लेता तो चढ़ते चढ़ते वो आर्थराइटिस हो जाता उसको। तो इसलिए अब त्रिशंकु इस विचार को लेकर, त्रिशंकु कहां पहुंचता है? वशिष्ठ मुनि, क्योंकि वशिष्ठ मुनि वो उस वंश के गुरु, तो वशिष्ठ मुनि की ओर पहुंचता है त्रिशंकु और अपना प्रस्ताव रखता है कि गुरु बहुत प्रसन्न होंगे इस प्रस्ताव को सुनकर। गुरु बोलेंगे, शाबाश बेटा, क्या गुल खिलाया तूने। तो वशिष्ठ मुनि ने जब ये सुना त्रिशंकु का प्रस्ताव, तो वशिष्ठ मुनि कहने लगे, तुमसे बड़ा बेवकूफ नहीं देखा मैंने कि तुम तुम क्या चाह रहे हो, मतलब क्या विचारधारा है तुम्हारी। सबसे पहले तो तुम इस क्षण भंगुर सौंदर्य पर इतना गुरूर रख रहे हो, और फिर तुम इस सौंदर्य को दूसरों को दिखाना चाहते हो, और सशरीर तुम स्वर्ग जाना चाहते हो। कदापि नहीं। तो उन्होंने ये सिखाया, इफ यू वॉन्ट टू बी द सोर्स ऑफ लाइट टू द वर्ल्ड, बी रेडी टू बर्न। केवल रस्ते का माल सस्ते में मिलता है। यदि हमें जीवन में रस्ते का माल चाहिए तो हाँ, वो सस्ते में मिल जाएगा। जैसे कि एक घी की बाती, जब घी की बाती किसी अंधेरे स्थान को प्रज्वलित करना चाहती है, प्रकाशमान करना चाहती है, तो घी की बाती को जलना होगा। जब तक कि घी की बाती जलेगी नहीं, तब तक वो अंधेरेपन को दूर नहीं कर पाएगी। इफ यू वॉन्ट टू बिकम द सोर्स, इफ यू वॉन्ट टू बिकम द सन, बी रेडी टू बर्न। चैतन्य महाप्रभु की जो कृपा है, हमारे आचार्य ने कही है कि चैतन्य महाप्रभु की कृपा शेरनी के दूध के समान है। शेरनी का जो दूध होता है वो किसी साधारण पात्र या बर्तन में कोई नहीं निकाल सकता। यदि कोई निकालने भी जाए तो शेरनी के दूध को कोई निकालने जाएगा? परंतु यदि शेरनी का दूध कोई निकाल भी ले तो बर्तन कौन सा चाहिए? सोने का बना हुआ बर्तन चाहिए। गौर गोविंद महाराज अपने एक प्रवचन में कह रहे थे कि शेरनी के दूध को केवल सोने का बर्तन ही अपने आप में अट सकता है, समा सकता है। और कोई बर्तन यदि ले जाओगे तो वो दूध इतना शक्तिशाली है कि वो बर्तन को तोड़ देगा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त करनी है तो अपने अहंकार को दूर कर तृणादपि सुनी चेन तरोर इव सहिष्णुना, इन इंग्रेडिएंट से ये पात्र बनता है। तो ये वशिष्ठ मुनि ने इनको सिखाया। अब वशिष्ठ मुनि ने जब मना कर दिया त्रिशंकु को, सवाल ही नहीं है, तो त्रिशंकु मानने वालों में से नहीं था। त्रिशंकु गया वशिष्ठ मुनि के पुत्रों के पास, और वशिष्ठ मुनि के पुत्रों को त्रिशंकु कहता है कि देखो, तुम्हारे जो पिताजी हैं वो बूढ़े हो चुके हैं, तो उनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो दक्यानुसी हैं, बहुत पुराने विचारों वाले हैं तुम्हारे पिताजी, परंतु तुम लोग यंग हो, यंग। त्रिशंकु क्या बोलता है? तुम लोग यंग हो, मैं तुमको ब्रेक देना चाहता हूं। तुमको मैं ब्रेक देना चाहता हूं एक ऐसा प्रोजेक्ट कि जो तुम कर लोगे सिद्ध तो तुम्हारे लिए पेटेंट मैं करवा दूंगा, तुम्हारे ब्रांड के नाम से वो जाएगा, जो तुम्हारे पिताजी नहीं कर सके। आई विल गिव यू अ ब्रेक। त्रिशंकु क्या सिखा रहा है? ही वॉज लाइक मॉडर्न सेल्फिश कॉर्पोरेट हु इंस्टिल्स कॉम्पिटिटिव इनसिक्योरिटी अमंगस्ट हिज सबॉर्डिनेट्स टू गेट हिज वर्क डन। उसको कोई ये वशिष्ठ मुनि के पुत्रों का गुणगान नहीं कराना था, उसको अपनी फाइल पास करानी थी। एक बार एक अमीर व्यक्ति अपनी आलीशान गाड़ी में वो निकला, और उसने देखा कि दो मनुष्य वो घास खा रहे हैं, जैसे कोई पशु घास खाता है, जैसे गाय बैल बकरी इत्यादि, तो ये घास खा रहे हैं दो मनुष्य। तो इसने जब देखा कि क्या स्थिति है, ये लोग घास खाने पे उतारू हो गए, तो उसने अपनी गाड़ी रोकी। गाड़ी रोककर उसने दोनों को कहा, तुम लोग आओ मेरी गाड़ी में बैठो, मेरे पास बहुत अच्छा एक प्रपोजल है तुम्हारे लिए। तो ये लोग बहुत प्रसन्न हुए, अरे इतनी आलीशान गाड़ी, बहुत ऐश्वर्यशाली व्यक्ति लग रहा है। तो वो लोग गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी में बिठाकर इनको अपने बंगले पर ले आया, और इसका बंगला इतना बड़ा विशाल। तो बंगले को देखकर इन दोनों के अंदर आशाओं की किरण जागने लगी, आशा की एक किरण नहीं, आशाओं की कई किरण जागने लगी कि ये वाह अपने बंगले पर ले आए डायरेक्टली। फिर इसने इनको कहा अब नीचे उतरो, बंगले के सामने बड़ा लॉन था, बोला ये घास खा सकते हो, ये ज्यादा मीठा है। तो उसने जो क्या दिखाया उनको, प्रलोभन क्या दिखाया कि मैं तुम्हें समृद्ध बनाऊंगा। और किस प्रकार की समृद्धि दी कि मेरे बंगले के लॉन का जो घास है वो सबसे मीठा है, ये पसंद आएगा तुमको, इसको खाओ। तो इसी प्रकार से त्रिशंकु इस मनोवृत्ति का था कि यदि बाप मेरी इच्छा पूरी न कर सका चलो बेटों के पास जाता हूं। तो ये जो बेटे वशिष्ठ मुनि के बेटे, ये इतने क्रोधित हुए त्रिशंकु के इस प्रस्ताव को सुनकर और अपने पिता का अपमान सुनकर, तिरस्कार सुनकर, कि फिर इन्होंने त्रिशंकु को श्राप दिया। और क्या श्राप दिया, तुम्हें जो गुरूर है तुम्हारे सौंदर्य के ऊपर, इसी क्षण तुम तुम्हारे राज्य का सबसे क्रूप बदसूरत व्यक्ति बन जाओ। अब देखो जो उसका हुकुम का इक्का था उसको जोकर बना दिया, जिसके लिए वो इतनी सब मेहनत कसरत कर रहा था अब वही उसके हाथ से जाती रही। तो तुरंत यहां पर त्रिशंकु अब अपने राज्य में सबसे बदसूरत व्यक्ति बन जाता है। तो आपको क्या लगता है कि त्रिशंकु हार मानने वालों में से था? नहीं, त्रिशंकु हार मानने वालों में से नहीं था। तो त्रिशंकु ने सोचा नहीं, अब तो चाहे कुछ भी हो जाए मैं तो स्वर्ग जाके रहूंगा और मैं इसी रूप में जाके रहूंगा, जो भी मेरा रूप हो मैं स्वर्ग जाके रहूंगा। तो वशिष्ठ नहीं, वशिष्ठ के पुत्र नहीं, मैं जाऊंगा विश्वामित्र मुनि के पास। तो हमने विश्वामित्र मुनि को कहां छोड़ा था? साउथ में है ना। तो अभी विश्वामित्र मुनि के पास त्रिशंकु पहुंचता है। और त्रिशंकु देखिए, वो विश्वामित्र मुनि के पास जाकर जब उसने प्रस्ताव रखा, तो कैसा प्रस्ताव रखा देखो, कैसे उसने विश्वामित्र मुनि को बताया कि देखो मैं एक मासूम सी इच्छा मेरी थी। कौन सी मासूम सी इच्छा थी मेरी? कि मैं स्वर्ग जाना चाहता था। कोई पाप है स्वर्ग जाना? I had a very honest desire to go to heaven. तो विश्वामित्र मुनि, जब विश्वामित्र मुनि आप अपने ध्यान से वो बाहर आए तो उन्होंने इस त्रिशंकु को देखा, और त्रिशंकु ने जब ये प्रस्ताव रखा तो विश्वामित्र मुनि बोले तो एक तो तूने मेरे तपस्या को भंग किया, तूने मेरा खुद का दूसरा मिशन चल रहा है, मैं अपने डेडलाइन पे काम कर रहा हूं और तू बीच में डिस्टर्ब कर रहा है, और वो भी ऐसे फालतू प्रस्ताव को लेके, तुझे सशरीर स्वर्ग पर जाना है, दफा हो यहां से। तो यहां पर ये किस प्रकार से प्रेजेंट कर रहा है त्रिशंकु कि अरे मेरा एक ऑनेस्ट डिजायर है ये, ऑनेस्ट। तो यहां पर त्रिशंकु ये जो 20वां लेसन क्या सिखा रहा है, हिपोक्रिटिकल एंड डिप्लोमैटिक पीपल नो द आर्ट ऑफ प्रेजेंटिंग अधर्मा एज धर्मा, जो कि भगवान के किसी भी नियम में ये फिट नहीं हो रहा है, लेकिन त्रिशंकु ने उसको कैसे प्रेजेंट किया कि मैं कितना ईमानदार हूं, मेरी ईमानदारी देखो, मैं ईमानदारी से जाना चाह रहा हूं स्वर्ग। एक गांव का चौधरी हुक्का पी रहा था, हुक्का देखे होंगे ना, फुर फुर करके हुक्का पीते हैं, तो हुक्का पी रहा था, रोज पिया करता था, घंटों हुक्का लेके बैठा रहता था अपनी वो खाट के ऊपर। तो उसकी पत्नी उसको आके चिल्लाती है कि अरे तू ये अपने फेफड़ों को क्या बना रहा है, इतना हुक्का पीता, इतना हुक्का पीता। तो ये कैसे डिस्क्राइब करता है हुक्के को, ये पॉइंट को दर्शा रहा है। तो ये अपनी बीवी को कहता है, चौधरण को कहता है, चौधरी है तो चौधरण को कहता है कि अरे इस हुक्के में तीन देवता हैं, मैं देव पूजा कर रहा हूं, तीन तीन देवता निवास करते हैं हुक्के में। सबसे नीचे जल देवता है, बीच में पवन देवता है और ऊपर अग्नि देवता है। तुमको लग रहा है कि मैं नशा कर रहा हूं, परंतु मैं देवताओं की आराधना कर रहा हूं, तीन तीन देवताओं की आराधना। फुर, फुर, फुर। इसे कहते हैं व्हेन यू जस्टिफाई योर रॉन्ग डूइंग्स। हिपोक्रिटिकल एंड डिप्लोमैटिक पीपल आर लाइक त्रिशंकु, दे विल प्रेजेंट अधर्मा एज धर्मा। तो जब विश्वामित्र मुनि ने दफा कर दिया तो त्रिशंकु अब यहां पर भी बेचारा मायूस हो गया। तो जाते जाते त्रिशंकु कहता है मुझे पता ही था, अरे जब वशिष्ठ नहीं कर सके तो आप क्या कर पाएंगे। विश्वामित्र मुनि ने जब वशिष्ठ का नाम सुना, इधर आना इधर आना, क्या कहा तुमने। तो ये जानता था, त्रिशंकु जानता था, तो उसने अपना ब्रह्मास्त्र लास्ट में छोड़ा। जाते जाते ऐसे निकल रहा था, जानता था वशिष्ठ नहीं कर पाए, आप क्या कर पाओगे। वशिष्ठ ने मना किया, हाँ वशिष्ठ ने, वशिष्ठ के पुत्रों ने बोला कि ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर वशिष्ठ ने बोला है पॉसिबल नहीं है तो मैं पॉसिबल कर कर बताऊंगा, बैठ इधर। तो त्रिशंकु ये क्या सिखाता है, पॉलिटिकल पीपल यूज अदर्स वीकनेसेस टू मेक दैट एज देयर स्ट्रेंथ। त्रिशंकु ने विश्वामित्र मुनि के वीकनेस को पकड़ा। विश्वामित्र मुनि की वीकनेस क्या, वशिष्ठ। तब तक विश्वामित्र मुनि भी पूरे प्रपोजल को बर्खास्त कर रहे थे, परंतु जैसे ही वशिष्ठ का नाम सुना, नहीं अब मैं पूरा कर कर दिखाऊंगा, जो वशिष्ठ ने मना किया वो मैं सिद्ध कर कर बताऊंगा। तो अब विश्वामित्र मुनि ने अपने पुत्रों को बुलाया, अलग अलग लौट के उनके पुत्र थे विश्वामित्र मुनि के, आते रहते हैं रामायण में। तो नेक्स्ट सेकंड लौट को बुलाया, बुलाकर कहा कि जितने ऋषि मुनि हैं, सारे ऋषि मुनि इस पृथ्वी के, उन सब को बुलाओ, मैं एक ऐसा यज्ञ करना चाहता हूं, ऐसा विशाल यज्ञ करना चाहता हूं जिसने आज तक ऐसा कोई यज्ञ न किया हो, न कभी कोई कर पाए, न भूतो न भविष्यति, ऐसा ये वर्ल्ड फेमस यज्ञ होगा, इंटरनेशनल यज्ञ। तो इस इंटरनेशनल यज्ञ में जितने बड़े बड़े दिग्गज ऋषि मुनि सबको बुलाओ, जाओ, और यदि कोई आने से मना कर दे तो मुझे बताना, मुझे बताना। तो मानो बंदूक की नोक पर सबको बुलाया गया। तो इधर विश्वामित्र मुनि वो क्या बता रहे हैं, फोर्स विल ब्रिंग क्वांटिटी बट विनिंग पीपल्स हार्ट विल ब्रिंग क्वालिटी। तो यहां पर जब अब विश्वामित्र मुनि को अब तक बहुत लोग जानते थे, बहुत फेमस हो चुके थे विश्वामित्र मुनि, तो वहां पर जब इनके पुत्र जा जाके ये लोग ऐसा अल्टीमेटम दे रहे हैं, फतवा निकाल दिया, मानो क्या फतवा निकाल दिया, कोई जो न आए उसका नाम लिख के मुझे बताना, खैर नहीं उसकी। तो कोऑपरेशन सूत्र, यहां से हम क्या सीखते हैं, द इजिएस्ट वे टू गेट पीपल टू कोऑपरेट इज बाय शोइंग माइट, अपनी शक्ति दिखाकर। अ बेटर वे इज टू ऑफर बेनिफिट्स, उनको कुछ प्रलोभन देकर। बट द बेस्ट वे टू इन्फ्लुएंस पीपल इज बाय योर कैरेक्टर एंड प्योरिटी. इफ यू शो देम माइट, माइट अर्थात बल, बाहर का शारीरिक बल, इफ यू शो देम माइट यू गेन देयर फिजिकल प्रेजेंस, ओनली नंबर्स इंक्रीज. इफ यू ऑफर बेनिफिट्स यू गेन देयर इंटेलिजेंस व्हेन आइडियाज विल इंक्रीज. बट इफ यू शो देम लव देन यू विल विन देयर हार्ट्स एंड कमिटमेंट इंक्रीजेस. दिस इज द वंडरफुल सूत्र ऑफ हाउ टू विन द हार्ट्स, इन्फ्लुएंस द पीपल. एक कंपनी में बॉस ने एक चुटकुला सुनाया जो क्रैक किया. सब लोग जोर जोर से हंसे एक व्यक्ति को छोड़कर. तो बॉस ने पूछा, क्या भाई तू, तेरे को चुटकुला समझ में नहीं आया? उसने कहा, नहीं सर, मैंने कल रिजाइन कर दिया. अर्थात बाकी लोग जो हंस रहे थे उनको चुटकुले से कोई लेना देना नहीं था, पापी पेट का सवाल है. सो इफ यू गेट पीपल फोर्सफुली जस्ट यूजिंग योर माइट, देन यू माइट गेट ओनली क्वांटिटी बट नॉट द क्वालिटी. वो विश्वामित्र मुनि कर रहे थे. तो अब हुआ क्या कि सब लोग आए, किनको छोड़कर? वशिष्ठ मुनि और वशिष्ठ मुनि के पुत्रों को छोड़कर सभी लोग वहां पर पहुंच गए. और जब बाकियों को समझ में आया, क्योंकि यहां पर इन्होंने किया क्या कि इन्होंने वशिष्ठ मुनि के पुत्रों को श्राप दे दिया. उन्होंने मना किया क्योंकि वशिष्ठ मुनि को अब तक डायरेक्टली वो श्राप नहीं दे सकते थे. तो वशिष्ठ मुनि के पुत्रों को श्राप दे दिया कि वो नहीं आए. तो वो 700 जन्म वो जंगली जाति में पैदा हो. तो अब यहां पर बाकी वो चैन की सांस लिए, बाकी जो आए थे कि हम लोग आ गए. तो यज्ञ प्रारंभ हुआ, इंटरनेशनल यज्ञ प्रारंभ हुआ और सारे मंत्रोच्चारण सब कुछ, इतना बड़ा, बड़े पैमाने पर ये यज्ञ चल रहा था. सब कुछ इतने समय तक ये यज्ञ चला, सब लोग स्पेक्टेटर बैठ कर देख रहे हैं इस यज्ञ को. पूरा यज्ञ हुआ, त्रिशंकु भी आशा लगाए हुए, कुछ नहीं हुआ. यज्ञ के अंत में कुछ नहीं हुआ तो सारे ऋषि मुनि एक दूसरे को देख रहे हैं, विश्वामित्र मुनि की ओर देख रहे हैं, बस क्या बोले इतना तुमने ढोल पीटा, क्या कुछ नहीं हुआ? क्योंकि अनऑथोराइज्ड यज्ञ था ये. क्योंकि अनऑथोराइज्ड यज्ञ था तो एक भी देवता नहीं आया यज्ञ की आहुति लेने के लिए. एक भी देवता नहीं, लास्ट आहुति डालने के बाद कुछ भी नहीं हुआ. तो अब त्रिशंकु विश्वामित्र मुनि की ओर देख रहे हैं, मेरा क्या, मेरी ओर देखो, मेरा क्या? तब विश्वामित्र मुनि ने क्या किया, उन्होंने अपना पूरा बल, वो जो लेडल होता है जिसे आहुति देते हैं, वो हाथ में लिया और अपनी पूरी शक्ति लगा दी. और शक्ति लगाकर उसको स्वर्ग की ओर किया. उसको जब स्वर्ग की ओर किया तो सबके आंखों के सामने त्रिशंकु टेक ऑफ लिया, लिफ्ट ऑफ जिसको बोलते ना, जैसे कि एक, जैसे रॉकेट लिफ्ट ऑफ लेता है, वैसे त्रिशंकु स्वर्ग की ओर उड़ने लगा. और जब त्रिशंकु ने ये देखा, धीरे 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 ये ऊपर उठ रहा है, ऊपर उठ रहा है, ऊपर उठ रहा है, सभी लोग देख रहे हैं कि ये आज दिन तक कभी देखा नहीं गया कि कोई मनुष्य अपने मनुष्य शरीर सह शरीर वो स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर रहा है बिना मरे. सब लोग विश्वामित्र मुनि का गुणगान कर रहे. विश्वामित्र मुनि आंख बंद किए, वो अपनी पूरी शक्ति को लगाए, मंत्रोच्चारण किए हुए, तपोबल को लगाए हुए त्रिशंकु को ऊपर भेज रहे हैं। त्रिशंकु धीरे 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 और अग्रसर हो रहा है स्वर्ग की ओर। अमीजातो हम क्या काम काम गया। तो ऐसे वो सबकी और सब लोग देख रहे हैं। और एक स्टेज आया जब त्रिशंकु दिखाई भी नहीं दे रहा था। तो वो जब इस पृथ्वी के स्पीयर को क्रॉस किया, लेकिन सब कुछ अननेचुरल और आर्टिफिशियल था, तो उसके सर में जो दर्द शुरू हुआ, वो सहन नहीं कर पाया उस एटमॉस्फेयर को। बिना कोई सूट पहने हुए, कोई एस्ट्रोनॉट का कोई सूट नहीं पहना था, ऐसे ही डायरेक्टली बैठा बैठा विश्वामित्र मुनि ने उसको बिना सूटकेस के भेज रहे हैं ऊपर, बिना सूट और बिना सूटकेस। तो उसको ऐसा सरदर्द, उसका सर पूरा घूमने लगा, फटने लगा, और वो चिल्ला रहा है। परंतु सब लोगों को लग रहा है कि अरे वो इतना प्रसन्न है, हाथ ऊपर कर हरिबोल बोल रहा है। चलो वो लोग भी जाओ, अच्छा है, स्वर्गवासी लगाएंगे तुम्हारे आगे, नाम के आगे। तो इधर से क्या समझ में आता है, चीप शॉर्टकट्स आर प्लेजर इन द बिगिनिंग बट इंटेंस पेन इन द एंड। त्रिशंकु की ऐसी हालत होने लगी, अब तक तो स्वर्ग पहुंचा भी नहीं है, वो बीच में कहीं है। धीरे धीरे वो और ऊपर जाने लगा, क्योंकि यहां पर तो कोई ब्रेक नहीं था, विश्वामित्र मुनि तो पहुंचा के ही रहेंगे। तो वहां पर इंद्र, अब देखो एक और स्पेशल पर्सनैलिटी इंद्र, अब ये आते हैं प्ले में। तो इंद्र वो अपने वहां पर पार्टियों में बिजी थे, अप्सरा सोमरस इत्यादि। तो अचानक इंद्र के मैसेंजर आकर इंद्र को बोलते हैं कि भाई एक कोई घुसपैठिया आ रहा है, लिस्ट में नाम नहीं है उसका, हाँ अगली डकलिंग, एन अगली डकलिंग इज कमिंग नीचे से। तो इंद्र को जो पता चला, ये ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो पूरे हमारे स्वर्ग में एंट्री के नियमों के विरुद्ध है। तो इंद्र ने अपना वज्र उठाया और वहां से अपनी शक्ति से त्रिशंकु उल्टा वापस। अपने सर के बल अब वापस नीचे गिर रहा है। तो यहां पर बाकी सारे ऋषि मुनि इतने समय से बैठे हुए थे, वो लोग सब अपना सब झोली वोली पैक करके निकल रहे हैं, देख रहे त्रिशंकु वापस आ रहा है। बोले क्या हो गया इतनी जल्दी। तो त्रिशंकु अभी वो इतनी तेज रफ्तार से गिर रहा है, और वो लोग विश्वामित्र मुनि की ओर देख रहे हैं कि अरे ये वापस आ रहा है, आप आंख खोलो देखो। विश्वामित्र मुनि ने जब देखा ये वापस आ रहा है, वापस से उन्होंने करची उठाई, वापस त्रिशंकु वापस यू टर्न लेके वापस ऊपर। इंद्र वहां पर वो देख रहे हैं फिर से आ रहा है, वो उठा के फिर से। तो ये लोग अभी ऐसा लग रहा था कि जैसे इंद्र और विश्वामित्र मुनि बैडमिंटन खेल रहे, ये ऐसे इधर से ये इधर से, और त्रिशंकु शटलकॉक है। तो इससे क्या समझ में आता है, नेवर ट्राई टू गो टू अ प्लेस वेयर यू आर नॉट वेलकम्ड, वेयर यू आर नॉट क्वालिफाइड टू एंटर। त्रिशंकु वॉज ट्राइंग टू डू द सेम, ही वॉज ट्राइंग टू एंटर वेयर ही वॉज अनवेलकम्ड एंड वेयर ही वॉज नॉट क्वालिफाइड। दो एक साल पहले यूके में एक डिवोटी, वो यहाँ अपने महाराष्ट्र के रहने वाले, तो वो मुझे प्रोग्राम के लिए ले जा रहे थे। तो पहली दफ़ा हमारी भेंट हो रही थी, तो वो मुझे पिकअप करने आए, तो उन्होंने मुझे पूछा प्रभु जी आप कहाँ के रहने वाले। तो मैंने कहा मैं वैसे राजस्थान का रहने वाला हूँ, बस इतना ही उन्होंने पूछा था, मैं राजस्थान का रहने वाला मैंने कह दिया। और उसके पश्चात फिर बाकी की बातें हुई, तो उन्होंने कहा प्रभु जी मेरा घर रास्ते में ही है, आप प्लीज़ थोड़ा घर पे आ सकते हैं। मैंने कहा प्रोग्राम के लिए लेट तो नहीं होगा। नहीं 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 लेट नहीं होगा, बस 5 मिनट आप आइए। तो अपने वो पत्नी को फोन लगा रहे थे, फोन उठा नहीं रही थी पत्नी। तो हुआ क्या कि उनका घर ऐसा था कि वो द्वार पर पहुंचे अपने घर के, बेल बजाया उनकी पत्नी, तो उन्होंने मराठी में, अब उन्होंने मुझसे क्या पूछ लिया था कि मैं कहाँ का हूँ, राजस्थान का, तो उनको लगा मुझे मराठी नहीं आती, तो अपनी पत्नी से वो मराठी में बात कर रहे हैं। ते मैं त्यांना आणलो आहे, त्यांना म्हणजे काय, तो वो यहां से वो मराठी में बोल रही, पहला सांगायचं ना, फोन करायचं, कोणाला पण घेऊन येता तुम्ही। और यहां पे मेरे को सब सुनाई दे रहा है। तो ये अभी मराठी में उनको बोला, अगं ते इथेच माझ्या पाठीशीकडे उभे, तो वो एकदम सहम गए। फिर मेरे को देख के, महाराज जी आइए आइए आइए, महाराज जी अंदर आइए अंदर आइए, हमारा परम सौभाग्य। तो मैंने भी कहा, हाँ मेरा भी परम सौभाग्य, आपने अनुमति दी अंदर आने की। फिर जो भी कुछ हो, थोड़ी बहुत बातें भी मैंने उनको कहा कि चलें, प्रोग्राम के लिए लेट होगा। बोला हाँ चलें चलें। वो सब बता रही थी कैसे पसारा गिरा हुआ है सब, ये सब वो मराठी में उनसे बातें कर रही थी, वो सब सुन रहा था, समझ रहा था मुझे। फिर जाते जाते मैं भी उनको बोला, वहीणी यू मी यू। तो पॉइंट ये है, नेवर ट्राई टू गो टू अ प्लेस वेयर यू आर नॉट वेलकम्ड। सो व्हेन टू प्राउड पीपल फाइट, द रिजल्ट इज सफरिंग त्रिशंकु। तो यहां पर ये दोनों लगे हुए हैं, अब इनको त्रिशंकु से कोई लेना देना नहीं है। विश्वामित्र मुनि को ये देख रहे, बेचारा त्रिशंकु इतना परेशान, यहां से वहां फेंका जा रहा है, इंद्र उनको तो कोई लेना देना था ही नहीं, इंद्र ने कैसे स्वीकार नहीं किया, वो वहां से, ये यहां से, वो यहां से। तो लेसन ये है कि देयर इज पर्सनल वर्सेस एक्वायर्ड एम्बिशन। हेवन वॉज नो लॉन्गर त्रिशंकु'स पर्सनल एम्बिशन, बट रैदर इट हैड बिकम विश्वामित्र'स एक्वायर्ड एम्बिशन। कि अभी मतलब सोचिए कि क्या माइंडसेट चल रहा है, कि बेचारा यहां पर ये चिल्ला रहा है, इसका सर फटे जा रहा है, ऊपर से नीचे सब लोग ये पूरा सर्कस देख रहे हैं नीचे, कि त्रिशंकु आधा ऊपर ऊपर जा रहा है, फिर यू टर्न लेके नीचे आ रहा है। तो यहां पर कुछ लेना देना नहीं है इनको त्रिशंकु से और त्रिशंकु की हालत से। व्हाट हैपेंड वाज, हियर इन विश्वामित्र मुनि टुक त्रिशंकु'स एम्बिशन, नाउ मेड हिज पर्सनल एक्वायर्ड एम्बिशन। और उस समय जब इस स्थिति में, इसलिए एक फ्रेज है ना कि त्रिशंकु की तरह अटका हुआ है कोई, ये यहां से फ्रेज आया है। तो त्रिशंकु उनको हम अब छोड़ देंगे इस स्थिति में, और इंद्र और विश्वामित्र मुनि के बीच में ये जो पर्सनल राइवलरी चालू हो गया, तो अब आगे हार मानने वालों में से दोनों नहीं थे। ये नहीं कि चलो भाई 5 मिनट के लिए इसको ले लेता हूं फिर मैं इसको भेज दूंगा, नहीं, इंद्र सवाल ही नहीं, आ ही नहीं सकता है, विश्वामित्र मुनि इसको तो मैं भेज के रहूंगा। तो इस दौरान जब इन दोनों का ये महासंग्राम चालू हुआ, अब वशिष्ठ मुनि रह गए साइड में। शुरू किस लिए किया था सब कुछ, वशिष्ठ मुनि के आगे वो अपना प्रतिकार करना चाहते थे, वो साइड में। अभी एक और नया एंटिटी आ गया, नया एनिमी, वो है इंद्र। अब त्रिशंकु को मैं भेज के रहूंगा, क्यों, क्योंकि वशिष्ठ नहीं भेज पाए, कनेक्शन है उसका भी, उसको भी, उनको भी लूप में लिया इन्होंने, वो भी कनेक्शन है कि वशिष्ठ नहीं भेज पाए मैं। और उनको क्या दिखाई दे रहा था कि वशिष्ठ मुनि मुस्कुरा रहे हैं विश्वामित्र मुनि की ओर देखकर, कि विश्वामित्र मुनि कब बाज आओगे, कब बाज आओगे। तो इसलिए हम यहां पर क्या सीखते हैं, अंत में टेक होम मैसेज क्या है, कि जो झूठी प्रशंसा है इस संसार की उससे पिघलना मत, झूठी प्रशंसा से पिघलना मत, आलोचना में उबलना मत, प्रशंसा में पिघलना मत, आलोचना में उबलना मत, अपने निस्वार्थ सेवा करते जाओ, क्योंकि इस धरा पर, इस धरा का धरा पर धरा रह जाएगा। अब तक हम ये लेसन यहाँ तक सीखे हैं और इसके आगे के लेसन्स हम लेंगे हमारे अगले रविवार के कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद की जय। थोड़ा समय हो गया इसलिए हम प्रश्न नहीं लेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।
इस ग्रह शिक्षाश्रम प्रभु की जय। हरे कृष्णा। कुछ सूचना इस प्रकार से है, जो भी काउंसिलर्स और जो ब्रह्मचारी भक्त प्रचारक